कि हमारे वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का, उसी को वैष्णव धर्म कहिए, भागवत धर्म कहिए, का मूल प्राण स्वरूप है भगवान का रूप मानना। जो लोग भगवान का रूप नहीं मानते वे सनातन धर्म को मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमारे वेदों में, पुराणों में, वेदांत में, महाभारत में, रामायण में, ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करने वालों के भी जो ईश्वर हैं, उन समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर भगवत्ता के चरम प्रतिपद वो हैं, उनका रूप है, उनका गुण है, उनकी दया है। यदि रूप नहीं मानेंगे तो निराकार जीरो शून्य हो जाएंगे। हमने दो दिनों तक तरह तरह के उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाने की चेष्टा की, इसलिए आप पक्की धारणा रखेंगे कि जो लोग यह कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, निराकार है, वो लोग ठीक नहीं कह रहे। निराकार इसीलिए कहा गया कि इन आंखों से नहीं देखा जाता, किंतु साथी साकार वो हैं, उनका रूप है। वही रूप लेकर के रामचंद्र जी सब समय आते हैं, वही रूप लेकर के कृष्ण आते हैं, वो बदलता नहीं है, किंतु साधन के द्वारा प्रकटित होता है। इन आंखों से तो आत्मा भी नहीं दिखाई देती, तो फिर वो कैसे दिखाई है? किंतु है रूप, सच्चिदानंदमय रूप है। एक बार दर्शन करने के बाद में फिर वो दर्शन बंद नहीं होता है और वो आदमी मुक्त हो जाता है। आज मैं आप लोगों से, कल तक तो हमने रामायण से दो एक उदाहरण लिए, आज हम लोग एक उदाहरण लेंगे भागवत से। एक ऐसा ही कुछ नास्तिक स्वभाव का एक व्यक्ति था जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था। उसका बेटा प्रहलाद हुआ। हिरण्यकश्यपु भगवान के रूप में, रूप को नहीं मानता, भगवान नाम की कोई चीज है ये भी नहीं मानता। यदि भगवान है तो निराकार है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसको कोई शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, और उसको हम ही लोगों ने बनाया। उसकी धारणा ये थी। किस प्रकार से दोनों में वाद विवाद हुआ, बचपन से ही प्रहलाद महाराज जी भगवान का नाम करते थे और इसका विरोध करता था उसका पिता। कैसा पिता था? कैसा? ब्रह्मा जी के बर से न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न किसी प्राणी से मरेगा, न अस्त्र शस्त्र से मरेगा, न घर के भी बाहर मरेगा, न भीतर मरेगा, न किसी महीने के अंदर में मरेगा, न आकाश में मरेगा, न पाताल में मरेगा। ऐसा सब भर ले लिया, वज्र की भांति 25 वर्ष का नौ युवक जैसा, वज्र जैसा शरीर, और समस्त देवताओं को भी परास्त कर लिया। उससे प्रहलाद महाराज जी से कैसे बनी और कैसे भगवान प्रकट होकर के दिखलाया उस नास्तिक को, और एक क्षण में उसका काम तमाम कर दिया, इसके विषय में हमारे ब्रह्मचारी प्रेम प्रयोजन जी कुछ प्रकाश डालेंगे। प्रेम ब्रह्मचारी प्रेम प्रयोजन प्रभु सुटकम सुनकर सारे जितने असुर के बालक थे उन पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने कहा जी हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जैसे जैसा कि उन्होंने बताया, सद्गुरु का पद आश्रय करके, उनके चरणों में अनकंडीशनल सरेंडर करके, भगवान का नाम कीर्तन स्मरण और ये सब करना चाहिए। तुम लोग आज से ही हमारे साथ में भगवान का नाम कीर्तन करो। और ये कह करके प्रहलाद महाराज जी सब बच्चों को लेकर के कीर्तन करने लगे। कौन सा है?
कन्हैया फिर से आ जाओ।
सब बच्चों की शरीर की सुध बुद्धि सब समाप्त हो गई, तन्मय होकर के हे नाथ नारायण वासुदेव दोनों हाथों को उठा करके कीर्तन करने लग गए। वह ध्वनि हिरण्यकश्यपु के कानों में पड़ी। किसी दूत ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, आपके सिंहासन के नीचे से ही और ये सब कीर्तन हो रहा है भगवान विष्णु का नारायण का। पर साथ ही साथ हाथों में तलवार लेकर और गदा लेकर लोहे के अमुदगर वहां से बहुत क्रोधित होकर के लाल लाल आंखें करके चला और बच्चों को कहा, अरे क्या कर रहे हो, मेरे आदेश को उल्लंघन करके और तुम हमारे शत्रु का नाम का कीर्तन कर रहा। मैं तुम्हें लाड प्यार से पाला पोसा, मैंने जन्म दिया, मैंने लिखाया पढ़ाया, तुमको सब कुछ किया और तुम मेरी बात नहीं मान करके हमारे शत्रु का गुणगान कर रहा है। अच्छा तो ठहरो, किसके बल पर तुम इतना साहस करके हमारा विरोध कर रहे हो। ब्रह्मा तक शंकर तक हमारा विरोध नहीं करते डर के मारे, देवता लोग थर थर कांपते हैं, मनुष्यों की तो बात क्या, और तुम हमारा विरोध कर रहे हो किसके बल पर, अभी देखे तुम्हारी कौन रक्षा करेगा। बोलो तो किसके बल पर तुम इतना घमंड में इतरा करके हमारी बात नहीं मानता। उसने बड़े नम्र स्वभाव से उत्तर दिया, बड़ी ही नम्रता से, पिताजी जो आपका बल है वही मेरा बल है, वही सारे संसार के लोगों का प्राणियों का बल है, उसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मैं उसी के बल पर बलियान हूँ, उसी के बल पर निर्भर हूँ, वही हमारा सब कुछ है। अच्छा कहाँ है तेरा, देखे तो अभी तुम्हारा सिर काटता हूँ और देखे जो आकर के कौन रक्षा करता है। कहाँ है वो तेरा प्रभु, हमारा प्रभु सर्वत्र है, खड़ खम्भ में है, रोम रोम में सबके है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां नहीं है, तो इस खंभे में है बतला तो जरूर है। मैंने कहा जे सर्वत्र है, तुम देख रहा तो मैं देख रहा हूं, मैं तो नहीं देख रहा, इसमें है जरूर है। सत्याभिधा तुमने जो भक्त भाषितम, अपने भक्त के कहे हुए बात कोई रक्षा करने के लिए भगवान साथ ही साथ में प्रस्तुत हैं। अयोध्या हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा तो देखो तेरे प्रभु का भी विनाश करके और मैं तुम्हें मारता हूँ, देखेंगे कौन रक्षा करता है। खूब गर्जन करके सिंह की भांति और अपने एक घूसे से वज्र जैसे और खम्भ को मारा और जो ही मारा वो खम्भ तो चूर्ण विचूर्ण हो गया और भयंकर सिंहनाद उसमें हुआ, ऐसी गर्जन जोर से हुई कि विश्व एकदम कांप उठा, हिरण्यकश्यपु भी कांप उठा। कहां से यह शब्द आया, थोड़ी देर में बैठता है क्या, न मृगोन मानुषम, ये तो हिरण भी नहीं है, सिंह भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है, किंतु दोनों का मिला हुआ। देखा जो ऊपर का इतना भाग सिंह भयंकर, उनके लपटों से जटाओं से आग निकल रही, उनके हजार हजार भुजाएं हजार हजार सब अस्त्र को धारण किए हुए और सिंह जैसा भयंकर और इधर शरीर मनुष्य जैसा है और बड़ी जोर से सिंहनाद की। उसने देखा, अरे ये कौन है, यही मेरा काल तो नहीं, बस झपटा और उनको पकड़ने के लिए, किंतु उनको कौन पकड़ सकता है। और उस समय समय क्या था, न दिन था न रात थी, शाम का समय, कोई महीना नहीं था, 12 तो महीने होते हैं तो महीना कौन से कैसे नहीं, मल मास का समय था, लीप ईयर, महीनों का बचा हुआ भाग, इसलिए महीना भी नहीं, दिन रात भी नहीं। भगवान ने झपट कर और उसे ऐसे पकड़ा जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसको अपने जंघे पर लेकर के उसे सुला दिया। अस्त्र शस्त्र नहीं, ऊपर और नीचे नहीं, घर के बाहर भीतर नहीं, दहलीज पर दरवाजे पर, और दहलीज के ऊपर में अपने आप बैठ गया, उसके ऊपर में जबरदस्ती पकड़ करके उसे यहां पर गिरा दिया और अपने नखों को लेकर के ऐसा डुबाया पेट में और एकदम बाघ की भांति सिंह की भांति उसे फाड़ दिया। और उसकी नाड़ी ताड़ी सब निकाल करके सब एकदम बाहर कर दी और उसे एकदम गले में लगा लिया। क्रोध से थर थर कांप रहे हैं, ये तुम्हारा गाय मिनटों में। और उनकी जटाओं से आग निकलने लगी, सारा विश्व भयभीत हो गया। देवता लोग आए थे, थर थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी से, अरे अब तो उनको शांत करो, अब तो हिरण्यकशिपु मारा गया। उन्होंने कहा मैं आज नहीं जा सकती, आज मेरे बस की बात नहीं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी, जो आप तो उनके बड़े प्रिय हैं, आप थोड़ा सा जाकर के उनको शांत कीजिए। महाभय की बात, मैं नहीं जा सकता आज, आज जाने से मुझे भी ना जाने क्या कर डालेंगे। शंकर भी नहीं गए, ब्रह्मा तो खुद गए ही नहीं। बच्चे को कहा ये बेटा प्रहलाद तेरे लिए आए हैं, आज जगत का ध्वंस कर देंगे, हिरण्यकश्यपु तो तुम्हारा बाप तो मारा गया, और संसार को ये दग्ध कर देंगे, जल्दी से जाकर के इनको शांत करो। प्रहलाद महाराज जी जैसे सिंह का बच्चा सिंह होता है, ऐसा एकदम फुदकता हुआ गया और कूद करके उनकी गोदी में बैठ गया। बैठने से उनका क्रोध शांत प्रशांत हो, जैसे आग में पानी डाल दी जाए, एकदम शांत हो गई और उनके आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। बोले जे बेटा मेरे आने में विलंब हो गया, मुझको बहुत पहले आना चाहिए था, मैं नहीं आ सका, इसलिए तुम क्षमा करो मुझे। मैं तुमको कुछ वर देना चाहता हूँ, मेरा दर्शन अमोघ है, इसका फल जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए, इसलिए तुम कुछ वर मांगो। प्रहलाद महाराज जी निर्भीक रूप से छोटे बालक, उनको कोई डर भय नहीं, जैसे सिंह का बच्चा अपने सिंह की पीठ पर खेल रहा हो, उसकी गोदी में खेल रहे हो। उन्होंने कहा जे पिताजी मैं तो बनिया नहीं, बनिया क्या करता है, कुछ लेता है तब कुछ देता है, 5 रुपये की चीज 5 रुपया दे दो तो घटिया किस्म का 2 रुपये का ही माल देगा, और उसमें भी तौलेगा, उस चौट तौलने में भी डंडी मारता है, वो अपनी मैया को भी नहीं छोड़ता, मैं तो धनी नहीं हो सकता, इसलिए मैं बनिया नहीं हूं, मैंने आपका भजन बनियागिरी के लिए कुछ लेने के लिए नहीं कहा, इसलिए हमारे अंदर में यदि कुछ मांगने की कुछ इच्छा हो आप कृपा करके इसको दूर कीजिए, मैं सदा के लिए आपकी सेवा करता रहूं। अच्छा बेटा तो भी मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर में मांगने की कुछ इच्छा नहीं है, तो भी तो कुछ मांग। उन्होंने कहा अच्छा तो यदि आप देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए, हमारे पिताजी ने आपके चरण में बहुत अपराध किया, बहुत भक्तों को सताया, भक्ति का निरादर किया, इसलिए आप कृपा करके इनको क्षमा करके कुछ गति दे दीजिए। उन्होंने बेटा जिस कुल में तुम्हारे जैसे वैष्णव का जन्म होता है 21 पीढ़ी के लोग बिना भजन किए भी तर जाते हैं, जो लोग साधारण रूप में मध्यम श्रेणी के वैष्णव हैं, जो अभी साधन भजन कर रहे हैं, उन वे लोग का 14 कुल के ऊपर नीचे के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है, और जिन्होंने अभी साधन भजन करना आरंभ किया है जैसे असुर बालक हैं साधारण रूप में, वो जब भी आरंभ किया है साधन, उनके 7 कुल पीढ़ी के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है। इसे मैं इनको तुम्हारे पिताजी का तो पहले ही उद्धार कर दिया है, तुम फिर भी कुछ मांगो, फिर भी मुझे यदि मांगना है तो ये मांगिए, मांगता हूं आपको भूल करके, भगवान को भूल करके सारे जीव पृथ्वी में जितने हैं ये दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए हमारा यदि कुछ पुण्य है, मैंने भजन किया है, तो हमारा पुण्य लेकर के इनको दे करके इन सब का उद्धार कर दें, और मैं इन लोगों का सारा पाप लेकर के कोटि कोटि जन्मों तक मैं इस संसार में आता जाता रहूंगा और भोग करूंगा। भगवान की आंखों से फिर आंसू आ गए, बोले थे बेटा मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता, इसलिए जो लोग तुम्हारी और हमारी इस गाथा को सुनेंगे और कहेंगे और भगवान का नाम करेंगे, उन सबको इस संसार से जरूर मुक्ति दे करके उनको चरण अपने चरणों में भक्ति दे दूंगा। इसमें कोई भी संदेश की बात नहीं है, कोई भी भूल नहीं है, कोई शंका ना करे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इसलिए आज इस कथा को जो सुन रहे हैं मन से और आज ही से भगवान का कुछ नाम करेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे
हरे
राम 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 हरे हरे।
प्रहलाद महाराज का चरित्र स्मरण करें, निश्चित रूप में गारंटी के साथ में जरूर उन पर भगवान कृपा करके अपने वचन की रक्षा करेंगे प्रतिज्ञा की, अन्यथा वो प्रतिज्ञा भंग के दोषी होंगे। भगवान प्रतिज्ञा करके उसको दूर नहीं करते, इसलिए आप लोग भी ऐसे ही समझिए। अब मैं ये बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने इतने भगवान का मैंने दिखलाया, भक्तों के वजह से उन्होंने दर्शन दिए। भगवान का दर्शन इतना सहज नहीं है, इसलिए भगवान का रूप है, किंतु साधन के द्वारा मिलते हैं, साधन के द्वारा मिलते हैं। वो साधन क्या है? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, खूब सावधानी से सुनेंगे, पालन करने की चेष्टा करेंगे, यही संतों के समाज में होता है। बिन सत्संग न पाव ही प्राणी, बिना सत्संग के ये चीजें नहीं होती। और उसमें संत लोग बिना किसी स्वार्थ के दया परवश होकर के ये उपदेश देते हैं। मैं भी आप लोगों से किसी चीज की आशा नहीं करता, इतने बड़े दूर देश से भारत से आया इसी बातों को सुनाने के लिए। यदि इतने सुनाने में से एक आदमी भी हमारे उपदेश को सुन करके उस पर चला, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो जीवन मनुष्य लोग को भी उतार देगा, अपने तो तारेगा, दूसरों को भी तार देगा। इसलिए संत लोग बिना किसी छल छंद के, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी लाभ के ये सब चीजें बतलाते हैं। हम लोग उनमें से नहीं हैं जो रामायण की कथा सुना करके प्रणाम का थाला रख देंगे, आरती करा करके पैसे ले लेंगे, ये नहीं। हम लोग आए हैं कुछ अपने भारतीय संस्कृति के विचारों को देने के लिए। आप लोग इसको ग्रहण करेंगे, रिटर्न में मैं कुछ नहीं चाहता। हम लोग कुछ भी, इतने लोग जो आए हैं ये भी रिटर्न में कुछ नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें बतला रहा हूं, खूब ध्यान से सुनेंगे और इसी में आप लोगों का कल्याण है। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। जिसमें भगवान को प्रीति हो, ऐसी भगवान की तन से मन से वचन से धन से और भावनाओं से एकांतिक रूप से प्रभु का हम सेवा करें। तन से सेवा, मन से सेवा, वाणी से सेवा, उनका गुणानुवाद कीर्तन करना, कानों से सेवा, उनकी कथाओं का श्रवण करना, शरीर से उनको प्रणाम करना, उनके भक्तों का प्रणाम करना, हाथों से उनका अर्चन करना, पैरों से उनके तीर्थों में जाना, ये सब भगवान की सेवा है। तन से मन से वचन से और भावनाओं से सब प्रकार की भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितनी भी चेष्टाएं हैं, इस चेष्टाओं को भक्ति कहते हैं। किंतु उसमें दो शर्त और है, उसमें किसी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं होनी चाहिए, कोई भी कामना ना हो, सब प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए केवल हो। और वो सारी चेष्टाएं ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा आच्छादित न हो। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान और कर्म के द्वारा हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा हम भक्ति कर लेंगे, जान लेंगे भगवत तत्व को, यह असंभव है। कर्मों के द्वारा भगवान को जान लेंगे असंभव है, इनके द्वारा भक्ति ढक जाती है। कैसे? हम आपको एक उदाहरण के द्वारा सहज रूप में, बोधगम्य रूप में आप लोगों को समझाने की चेष्टा करेंगे। कैसे? महाराज दशरथ राम 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 कह करके प्राण त्याग चुके हैं, कैकेयी को उन्होंने वर दिया था, ये तुम्हें दो वर दूंगा, तुम मांग लो। उसने वर मांगा यही रामचंद्र जी का, जो आज अभिषेक होने जा रहा है, उनको राजगद्दी दी जा रही है, उनको तिलक राज सिंहासन का दिया जा रहा है, वो बंद हो, भरत का राजगद्दी पर यह राज तिलक हो, भरत राजगद्दी पर बैठेगा, यह पहला। और 12 वर्ष के लिए रामचंद्र जी का वनवास हो, 14 वर्ष के लिए उनका वनवास हो। दो बातें, पहली बातें रामचंद्र भरत जी अयोध्या के पृथ्वी के राजा हों, आज तिलक दिया जाए राम के बदले, और रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास दिए जाए। ये नहीं कहा कि 14 वर्ष के बाद में रामचंद्र जी लौट आएंगे, इसके बाद में राजा हो जाएंगे, ये नहीं। भरत को राज्य मिले और रामचंद्र जी 14 वर्ष तक बाहर रहेंगे तो इसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा, फिर आएंगे भी तो उनको कोई नहीं पूछेगा, फिर उनको राज्य तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये दो वर मांगे। महाराज रामचंद्र जी को बुलाया, कह नहीं सके, कैकेयी ने ये कहा तुम्हारे पिताजी यही चाहते हैं कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ और भरत का यहां पर राजगद्दी मिले। रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को प्रणाम किया और सीता जी लक्ष्मण जी को लेकर के चले। मैं संक्षेप में बतला रहा, इधर रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण को लेकर के निकले और सिंगरेपुर में पहुंचे, रात में उनकी सारी प्रजाएं और सब लोग उनके पीछे पीछे चले, अयोध्या प्राय सुनी हो गई। महाराज दशरथ हाराम हाराम और हारा मन कर सके, प्राण निकल गए, चारों तरफ में लोग रोने पीटने लग गए। अब यह संवाद भरत जी को और शत्रुघ्न जो ननिहाल में थे यह भेजा गया और वहां से बड़े तेज घोड़ों पर रथ के सहारे वो आए। अयोध्या को उन्होंने देखा जो विधवा जैसी है, उनके आगमन के लिए स्वागत के लिए कोई नहीं आया। जब वहां से भीतर में पहुंचे देखा गधे रो रहे हैं, सिगाल रो रहे हैं, चारों तरफ में अक्सुन हो रहे हैं, क्या मामला, कैसे ये हुआ। जब गए तो देखा जैसे ये तो मेरी मैया के पास में महाराज दशरथ रहते थे, जरा वहां पर जाएं पिताजी से तो भेंट करूं। तो वहां गए, कैकेयी जी वहां पर मंथरा के साथ में खड़ी थी, देखा जब उनके सिर में सिंदूर नहीं है। उन्होंने कहा जी मैया ये क्या बात, पिताजी कहाँ है। तो पिताजी तो परलोक सिधारे, क्यों, सब कुछ तेरे लिए बेटा किया, मैंने तेरे लिए राज्य मांगा और राम को, राम कहाँ है लक्ष्मण, वो तो वनवास में गए, क्यों, मैंने यही बार मांगा तुम्हारा राज्य निष्कंटक होने के लिए, 14 वर्ष तक वो वन में रहे, वो तो निकल गए और उनके शोक में हाराम करते ही ये मारे गए। अच्छा तो तुम मेरी मैया नहीं रही, आज रामचंद्र हमारे ऊपर में क्रोधित नहीं होते तो मैं तुम्हें आज मैं काट देता, तुम्हारा वध कर देता, आज से तुम्हारा मैया और हमारा पुत्र इन दोनों का संबंध विच्छेद हुआ, अब भविष्य में मैं तुम्हारी मैया मेरी नहीं रही, मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहा। तुमने राम के प्रति ऐसा व्यवहार किया, मुझे महाराज पिताजी के लिए दुख नहीं, तुम विधवा हो गई इसके लिए भी दुख नहीं, पिता के लिए दुख नहीं, तुमने भैया को राम को जैसे भाई और उनको तुमने वन में भेजा, अच्छा ठीक है अब से तुम्हारा संबंध नहीं। इतने में मंथरा आई और कहिए चलो तुम्हारे लिए राज सिंहासन है, अच्छा राज सिंहासन है। इतने में शत्रुघ्न जी ने उसके कुबर पर ऐसी लात मारी जो वो मरने वाली थी, चिल्लाने लगी रक्षा करो रक्षा करो, तब किसी प्रकार से भरत जी ने उसकी रक्षा की। इसके बाद में कौशल्या के यहां गए, बड़े रोए धोए, दूसरे दिन उन्होंने घोषणा की मैं आज ही महाराज वशिष्ठ और सारी सेनाओं और मंत्रियों के साथ में ब्राह्मणों के साथ में मैं चित्रकूट में जाऊंगा, यहां मेरे भैया हैं, और उनको मना करके ले आऊंगा, उनको राजीव गद्दी पर बैठा करके मैं उनकी सेवा करूंगा। ये कह करके सबको लेकर के चित्रकूट में चले। कैसे चित्रकूट में चले, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और हमारे आदि वाल्मीकि जी ने कवि ने, जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं, जो तुलसीदास के भी गुरु हैं, उन्होंने वर्णन किया है वाल्मीकि मार्मिक रूप में। मैं समझता था कि तुलसीदास जी बड़े कोमल स्वभाव के होंगे। मैं देखता हूं कि तुलसीदास जी बड़े कठोर हृदय के थे। क्यों? जिनका रामचरितमानस पढ़ करके सभी लोग रोते हैं, उनकी कलम कैसे थिर रही होगी, कैसे उन्होंने रामचरित को लिखा, खुद लिखा, प्रेम में गल गए होंगे तो उनकी कलम कैसे चलती होगी, जिसके पढ़ने से सारे दूसरे लोग रोते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि न जाने कैसे उनका कठोर है न कोमल, मैं नहीं वर्णन कर सकता। मैं तो एक चौपाई पढ़ करके भी स्थिर नहीं रह पाता। जब वहां पर गए, इसका वर्णन उन्होंने दिया बड़े मार्मिक रूप से, एक कठोर हृदय भी पिघल जाएगा। चित्रकूट में पहुंचे, कैकई ने कौशल्या जी से कहा, दीदी बहन, भरत तो मुझे मैया कहता नहीं और मुझे ले नहीं जाएगा कहने से भी अपने साथ। बहन तू बड़ी दयालु है, तुम हमारे साथ में, अपने साथ में हमें ले लो। मैं राम को कह करके अपनी जो वर मांगा है मैं लौटा लूंगी और उसको ले आकर के यहीं पर राज्य दिलाऊंगी, इसलिए मुझे भी साथ ले चल। कौशल्या ने उनको भी साथ ले लिया। कई कई सुमित्रा और ये भी गई, वशिष्ठ जी गए, विश्वामित्र को बुला लिया गया और बड़े बड़े ऋषि महर्षि वामदेव इत्यादि सभी उनके साथ में गए। चतुरंगिणी सेना सज करके चली और कैसे जब चित्रकूट में पहुंची, लक्ष्मण जी तो देख करके बोली, जैसे भरत अब आया है हमें मारने के लिए, राम को मारने के लिए, अच्छा तो मैं आज भरत को भी मारूंगा, शत्रुघ्न को भी मारूंगा और पृथ्वी को ध्वंस कर दूंगा और गए करके राम भैया को वहां पर बैठाऊंगा। आज लोग मैं शिव की साक्षी और भैया की साक्षी देकर के कहता हूं मैं जरूर इसे मारूंगा, आज सारी पृथ्वी देखे। राम ने कहा जी देखो तुम चिंता मत करो, भरत के समान पृथ्वी में कोई दूसरा नहीं है। हो तन भव तल भाव भरत को, यदि पृथ्वी में भरत का प्रेम का भाव जगत में नहीं होता तो पृथ्वी शून्य रह जाती, इसलिए तुम थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, और नहीं तो तुम ऐसा करोगे तो पीछे पछताओगे। तुम थोड़ा सा धैर्य धारण करके रहो, देखो तो क्या होता है। भरत जी वहां पर आए, राम के चरणों में लकटू की भांति गिर गए, रोने लगे। रामचंद्र ने उन्हें गले लगा लिया। उस समय उनका जो मिलन हुआ उसको देख करके पत्थर भी पिघल जाएगा। सारे लोग रो रहे हैं, राम भी रो रहे हैं, भरत भी रो रहे हैं। किसी प्रकार से सबको शांत किया। भरत जी कुछ कह नहीं सकते, प्रेम में पगे हुए। भैया तुमको लौट जाना ये भी भूल गए। राम ने भी ये नहीं पूछा कि किस लिए तुम आया, ये भी भूल गए। किसी प्रकार से वो दिन बीत गया। उनको पता लगा राम को जो महाराज दशरथ मेरा नाम करते हुए पिताजी परलोक सिधा रहे हैं। दूसरे दिन उनको इमली का चूर्ण बना करके, आटा उसका पिंड बना करके वहां पर वहां पर नदी है चित्रकूट में, उस चित्रकूट के नदी में उन्होंने उनको संस्कार कराया और पिंड दान किया। इसके बाद में उस दिन भी किसी का भोजन नहीं हुआ, उपवास रहे। आज पहली बार उन्होंने सुना था, सब लोग उपवास रहे। दूसरे दिन फिर स्नान स्नान करने के बाद में सब लोग बैठे हुए थे, इतने में सुना जी महाराज जनक भी आ गए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई सबको, अब तो सभी लोग मिल करके राम को लौटा ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।